इस लेख का अध्ययन 23 से 29 मार्च के दौरान किया जाएगा। विषय, आप फिरौती बलिदान के लिए अपनी कदर कैसे दिखाएंगे। ये लेख 2 कुरिन्थियों 5:14 पर आधारित है, जहां लिखा है, मसीह का प्यार हमें मजबूर करता है। गीत 18, फिरौती के लिए एहसानमंद। क्या सीखेंगे हम सब, कैसे दिखा सकते हैं कि हम फिरौती बलिदान के लिए यहोवा का एहसान मानते हैं। पैराग्राफ 1 और 2, सवाल, यीशु का फिरौती बलिदान हमें क्या करने के लिए मजबूर करता है और क्यों। सोचिए, आप एक इमारत में थे मगर फिर वो ढह गई और आप उसके नीचे दब गए, लेकिन फिर एक आदमी आकर आपको उसमें से बाहर निकाल लेता है। क्या आपका दिल उसके लिए एहसान से नहीं भर जाएगा। भले ही उसने आपके साथ साथ और भी लोगों की जान बचाई हो, लेकिन क्या आप उसे यह नहीं बताना चाहेंगे कि आप उसका कितना एहसान मानते हैं और उसने आपके लिए जो किया वो आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसा हमने पिछले लेख में देखा, हम विरासत में मिले पाप के तले दबे हुए हैं और हम खुद को नहीं छुड़ा सकते, लेकिन यहोवा ने हमें छुड़ाने के लिए फिरौती बलिदान का इंतजाम किया। इससे हमें 1, अपनी गलतियों की माफी मिलती है, 2, पापी हालत से छुटकारा मिलता है, और 3, परमेश्वर के साथ हमारी सुलह हो पाती है। यीशु के फिरौती बलिदान की वजह से हमें नई दुनिया में हमेशा तक जीने की आशा भी मिली है। यीशु का बलिदान इस बात का सबूत है कि वो हम इंसानों से कितना प्यार करता है। धरती पर आने से हजारों साल पहले, जब उसने यहोवा के साथ मिलकर इंसानों की सृष्टि की, तब से वो हमसे प्यार करता आया है। यीशु ने हमसे जो प्यार किया, उस बारे में प्रेषित पौलुस ने कहा, मसीह का प्यार हमें मजबूर करता है। 2 कुरिन्थियों 5:14 और 15 में लिखा है, मसीह का प्यार हमें मजबूर करता है क्योंकि हमने ये नहीं छोड़ निकाला है। एक आदमी सबके लिए मरा और इस तरह सभी मर गए। वो सबके लिए मरा ताकि जो जीते हैं वो अब से खुद के लिए ना जिएं, बल्कि उसके लिए जिएं जो उनके लिए मरा और जिंदा किया गया। इसका मतलब, यीशु ने हमसे जो प्यार किया वो हमें कुछ करने के लिए उभारेगा, मानो मजबूर करेगा कि हम फिरौती बलिदान के लिए अपनी कदर जाहिर करें। पैराग्राफ 1 और 2 से जुड़ी तस्वीर में दिखाया गया है कि पिछले लेख में जिस आदमी का जिक्र किया गया था जो मलबे के नीचे दब गया था, उसे बचाव दल का एक आदमी बाहर निकाल रहा है। चित्र शीर्षक, हमें मलबे के नीचे से निकाला गया हो या विरासत में मिले पाप से, जिसने हमें छुड़ाया है उसका एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। पैराग्राफ 3, सवाल, हर कोई क्यों अलग तरीके से फिरौती के लिए अपनी कदर जाहिर करता है। यीशु ने फिरौती बलिदान देकर आपके लिए जो प्यार जाहिर किया, वो आपको क्या करने के लिए मजबूर करता है। हर कोई शायद इसका अलग जवाब दे, वो क्यों। जरा एक उदाहरण पर ध्यान दीजिए। 3 लोग 3 अलग-अलग शहरों में रहते हैं, लेकिन उन्हें एक ही जगह जाना है, तो जाहिर सी बात है कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तीनों अलग अलग रास्ता लेंगे। देखा जाए तो हम सबकी भी एक ही मंजिल है। हम ये जाहिर करना चाहते हैं कि हम यीशु के फिरौती बलिदान की कितनी कदर करते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए हम कौन सा रास्ता अपनाएंगे या क्या करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि अभी हम कहां हैं, अभी यहोवा के साथ हमारा कैसा रिश्ता है। इस लेख में हम देखेंगे कि 1, बाइबल विद्यार्थी, 2, जिनका बपतिस्मा हो चुका है, और 3, जो भेड़े परमेश्वर के झुंड से दूर चली गई हैं, वो यीशु के फिरौती बलिदान के लिए अपनी कदर कैसे जाहिर कर सकती हैं। बाइबल विद्यार्थी, पैराग्राफ 4, सवाल, जो लोग बाइबल अध्ययन कर रहे हैं उनके बारे में यहोवा कैसा महसूस करता है। क्या आप बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं। अगर हां, तो जरा इस बारे में सोचिए, आप यहोवा और बाइबल की शिक्षाओं के बारे में सीख रहे हैं। यह इस बात का सबूत है कि यहोवा ने आपको अपनी तरफ खींचा है और वो आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहता है। बाइबल में लिखा है कि यहोवा दिलों का जांचने वाला है। इसका मतलब, वो इस बात पर ध्यान देता है कि आप उसके बारे में सीखने के लिए और उसके स्तरों के मुताबिक जीने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। यकीन मानिए, आपको ये सब करता देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है। उसने आपके लिए यीशु के फिरौती बलिदान का इंतजाम किया। अगर उसने ऐसा ना किया होता तो आप कभी उसके साथ एक अच्छा रिश्ता नहीं बना पाते। इसलिए फिरौती बलिदान को कभी हल्के में मत लीजिए। पैराग्राफ 5, सवाल। जो बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं वो फिलिपियों 3:16 में दी सलाह कैसे मान सकते हैं? अगर आप बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं तो आप कैसे दिखा सकते हैं कि आप यीशु के फिरौती बलिदान की कदर करते हैं? ऐसा करने का एक तरीका है कि आप पौलुस की इस सलाह को माने जो उसने फिलिपी में रहने वाले मसीहों को दी थी। हमने जिस हद तक तरक्की की है, आओ हम इसी राह पर कायदे से चलते रहें। फिलिपियों 3:16। तो आप जीवन की जिस राह पर निकल पड़े हैं उस पर बने रहिए। किसी भी बात को इसके आड़े मत आने दीजिए। पैराग्राफ 6, सवाल। अगर किसी बाइबल विद्यार्थी को कोई शिक्षा मानना या कोई आदत छोड़ना मुश्किल लग रहा है तो वो क्या कर सकता है? क्या आपने हाल फिलहाल में बाइबल से कुछ ऐसा सीखा है जिसे मानना आपको मुश्किल लग रहा है? अगर ऐसा है तो उस बारे में थोड़ी और खोजबीन कीजिए और यहोवा से प्रार्थना कीजिए कि आप उस शिक्षा को और अच्छी तरह समझ पाएं। अगर तब भी आपको उसे समझना मुश्किल लगे तो उस बारे में बहुत ज्यादा चिंता मत कीजिए। हो सकता है कुछ वक्त बाद आप उस बात को समझ पाएं। क्या आपकी कोई ऐसी आदत है जो यहोवा को पसंद नहीं? क्या आपको वो आदत छोड़ना मुश्किल लग रहा है? तो याद रखिए कि यहोवा कभी हमसे कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कहता जो हम नहीं कर सकते। इसका मतलब आप उसके स्तर मान सकते हैं और अपनी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण 30:11-14 में लिखा है, आज मैं तुम्हें जो आज्ञाएं सुना रहा हूं उन्हें समझना या उन पर चलना तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये आज्ञाएं स्वर्ग में नहीं है कि तुम कहो हमारे लिए कौन स्वर्ग जाकर ये आज्ञाएं ले आएगा ताकि हम उन्हें सुने और माने। ना ही आज्ञाएं समुन्दर के उस पार हैं कि तुम कहो हमारे लिए कौन समुन्दर पार जाकर वो आज्ञाएं ले आएगा ताकि हम उन्हें सुने और माने। इसके बजाय कानून का ये संदेश तुम्हारे पास तुम्हारे ही मुंह में और दिल में है ताकि तुम इसके मुताबिक चलो। और यहोवा ने वादा किया है कि वो आपकी मदद करेगा, इसलिए हार मत मानिए। अगर आपको कोई बदलाव करना या कुछ मानना मुश्किल लग रहा है तो उस बारे में सोचते रहने के बजाय इस बारे में सोचिए कि यहोवा ने आपके लिए क्या कुछ किया है। उसने आपके लिए अपने बेटे की फिरौती तक दे दी। इस तरह सोचने से आपका दिल यहोवा के लिए एहसान से भर जाएगा और आप उससे और प्यार करने लगेंगे। तब आप समझ पाएंगे कि उसकी आज्ञाएं हम पर बोझ नहीं है। 1 यूहन्ना 5:3। पैराग्राफ 6 से जुड़ी तस्वीर में दिखाया गया है कि एक आदमी खुशी से जिए हमेशा के लिए किताब का पार्ट 40 पढ़ रहा है। उसके सामने टेबल पर सिगरेट का एक पैकेट रखा है और राखदान में जली हुई सिगरेट पड़ी है। चित्र शीर्षक, यहोवा कभी हमसे कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कहता जो हम नहीं कर सकते। उसकी मदद से हम उसके स्तरों के मुताबिक जी सकते हैं। पैराग्राफ 7, सवाल। जो बचपन से सच्चाई सीख रहे हैं वो किस बारे में सोच सकते हैं? क्या आप अभी छोटे हैं और बचपन से यहोवा के बारे में सीख रहे हैं? अगर हां तो आप भी एक बाइबल विद्यार्थी हैं। असल में आप अपने मम्मी पापा के सबसे खास बाइबल विद्यार्थी हैं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के करीब आओ और वो तुम्हारे करीब आएगा। याकूब 4:8। तो अगर आप यहोवा के करीब आने के लिए मेहनत करें तो वो भी आपके करीब आएगा। ऐसा नहीं है कि यहोवा ने आपके परिवार को अपनी तरफ खींचा और आप बस उनके साथ साथ आ गए। यहोवा एक एक इंसान को अपनी तरफ खींचता है, उसे भी जिसके मम्मी पापा उसे सच्चाई सिखाते हैं। लेकिन यहोवा के साथ आपकी दोस्ती इसलिए हो पाई क्योंकि उसने आपके लिए अपने बेटे की फिरौती दी। तो इसे कभी हल्के में मत लीजिए। क्यों ना इस साल स्मारक से पहले वक्त निकालकर आप इस बारे में सोचें कि यहोवा और यीशु ने आपके लिए क्या कुछ किया है। ऐसा करने से आपके दिल में उनके लिए प्यार बढ़ेगा और ये प्यार आपको मजबूर करेगा कि आप यहोवा की सेवा में लक्ष्य रखें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। इस तरह आप जाहिर कर पाएंगे कि आप फिरौती बलिदान की कितनी कदर करते हैं। जिनका बपतिस्मा हो चुका है। पैराग्राफ 8, सवाल, जिनका बपतिस्मा हो चुका है उन्होंने कैसे दिखाया है कि वो फिरौती बलिदान की कदर करते हैं? क्या आपका बपतिस्मा हो चुका है? अगर हाँ, तो आप कई तरीकों से दिखा चुके हैं कि आप फिरौती बलिदान की कदर करते हैं, जैसे अपने यहोवा के करीब आने और उसके स्तरों के मुताबिक जीने के लिए कदम उठाए। यीशु की आज्ञा मानकर आप दूसरों को अपने विश्वास के बारे में बताने लगे। आपने अपनी जिंदगी यहोवा को समर्पित की और बपतिस्मा लिया। हो सकता है आपके विश्वास की वजह से आपका विरोध भी हुआ हो, ऐसे में भी आप वफादारी से यहोवा की सेवा करते रहे। इस तरह आपने दिखाया कि आप यहोवा से बहुत प्यार करते हैं और फिरौती बलिदान की कदर करते हैं। पैराग्राफ 9, सवाल, जिनका बपतिस्मा हो चुका है उन्हें किस खतरे से सावधान रहना चाहिए? अगर आपको बपतिस्मा लिए कुछ वक्त हो चुका है तो आपको एक खतरे से सावधान रहना चाहिए। वो ये कि कहीं धीरे धीरे आप फिरौती बलिदान को हल्के में ना लेने लगे। ध्यान दीजिए कि पहली सदी में इफिसुस के मसीहों के साथ क्या हुआ। यीशु ने उनकी तारीफ की क्योंकि उन्होंने बहुत धीरज धरा था, लेकिन फिर यीशु ने उनसे कहा, मुझे तुम्हारे खिलाफ ये कहना है कि तुम में अब वो प्यार नहीं रहा जो पहले था। प्रकाशित वाक्य 2:3-4। यीशु की बात से पता चलता है कि शायद एक मसीह को पता भी ना चले और वो बेमन से यहोवा की सेवा करने लगे। हो सकता है वो प्रार्थना करता हो, सभाओं में जाता हो, प्रचार करता हो, लेकिन बस इसलिए कि ऐसा करना उसकी आदत बन गई है। तो अगर आपको लगता है कि यहोवा के लिए आपका प्यार पहले जैसा नहीं रहा, तब आप क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ 10, सवाल, आप पौलुस की सलाह कैसे मान सकते हैं? प्रेषित पौलुस ने तिमुथियुस को सलाह दी कि वो यहोवा की सेवा में लगा रहे और इस बारे में गहराई से सोचता रहे। पहला तिमुथियुस 4:13 में लिखा है, जब तक मैं ना आऊं तब तक लोगों के सामने पढ़कर सुनाने, उन्हें बढ़ावा देने और सिखाने में जी जान से लगा रहे। और आयत 13 में लिखा है, इन बातों के बारे में गहराई से सोचता रहे और इन्हीं में लगा रहे, ताकि तेरी तरक्की सब लोगों को साफ दिखाई दे। तो सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं ताकि आप जी जान से यहोवा की सेवा करें और पवित्र शक्ति के तेज से भरे रहें। रोमियो 12:11। जैसे क्या आप सभाओं के लिए और अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं? इस तरह आप उनमें और भी ध्यान दे पाएंगे। या क्या आप निजी अध्ययन करने के लिए किसी शांत जगह जा सकते हैं ताकि आप उन बातों पर और मनन कर सकें जो आपने सीखी हैं? जिस तरह आग को जलाए रखने के लिए लकड़ियां डालते रहनी होती हैं, उसी तरह फिरौती बलिदान और यहोवा ने हमारे लिए जो कुछ किया है उसके लिए अपने दिल में कदर बनाए रखने के लिए हमें यह सब करते रहना होगा। तो क्यों ना स्मारक से पहले के कुछ हफ्तों में थोड़ा वक्त निकालकर इस बारे में सोचें कि यहोवा के साक्षी होने की वजह से आपको कितनी आशीषें मिलती हैं। इससे भी फिरौती बलिदान के लिए आपके दिल में कदर बढ़ जाएगी। आखिर इसी वजह से तो यहोवा के साथ आपका एक रिश्ता है। पैराग्राफ 11 और 12, सवाल, अगर आपको लगता है कि यहोवा की सेवा में आपका जोश कम हो गया है, तो क्या इसका ये मतलब है कि यहोवा आपको अपनी पवित्र शक्ति नहीं दे रहा? समझाइए। अगर कभी आपको लगे कि आप में यहोवा की सेवा के लिए पहले जैसा जोश नहीं रहा, तो हिम्मत मत हारिए। ऐसा मत सोचिए कि यहोवा आपको अपनी पवित्र शक्ति नहीं दे रहा। याद कीजिए, प्रेषित पौलुस ने कुरिन्थ की मंडली से अपनी सेवा के बारे में क्या कहा था, अगर मैं ये काम ना चाहते हुए करता हूं तो भी मैं प्रबंधक का काम ही कर रहा हूं जो प्रभु ने मुझे सौंपा है। 1 कुरिन्थियों 9:17। उसके कहने का क्या मतलब था? पौलुस अपरिपूर्ण था, इसलिए कभी कभी उसका प्रचार करने का मन नहीं करता था, लेकिन उसने ठान लिया था कि उसे चाहे जैसा भी लग रहा हो वो प्रचार करना बंद नहीं करेगा। पौलुस की तरह आप भी ठान लीजिए कि जब आपका मन ना करे तब भी आप यहोवा की सेवा में लगे रहेंगे। यहोवा से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके अंदर उसकी सेवा करने की इच्छा पैदा करे और उसे पूरा करने की ताकत भी दे। फिलिपियों 2:13। उपासना से जुड़े कामों में लगे रहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे आप में फिर से जोश भर जाएगा, आपको यहोवा की सेवा करने का मन करने लगेगा और आपके दिल में यहोवा के लिए प्यार और बढ़ जाएगा। पैराग्राफ 11 और 12 से जुड़ी तस्वीर में दिखाया गया है कि एक बहन एक दूसरी बहन के साथ प्रचार के लिए गई है और वो अपने बच्चे को प्रेम में लेकर चल रही है। वो थोड़ी उदास नजर आ रही है। दूसरी बहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ है। चित्र शीर्षक, उपासना से जुड़े कामों में लगे रहिए, फिर चाहे आपको उन्हें करने का मन ना भी करे। पैराग्राफ 13। सवाल, हम कैसे खुद की जांच करते रह सकते हैं कि हम विश्वास में हैं या नहीं? जैसा 2 कुरिन्थियों 13:5 में बताया गया है, समय समय पर हम इस बारे में सोच सकते हैं कि हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं। वहां लिखा है, खुद को जांचते रहो कि तुम विश्वास में हो या नहीं, तुम क्या हो इसका सबूत देते रहो। ऐसा करने के लिए हम खुद से कुछ सवाल कर सकते हैं, जैसे, क्या मैं अपनी जिंदगी में यहोवा की सेवा को पहली जगह दे रहा हूं? मैं जिस तरह का मनोरंजन करता हूं, क्या उससे पता चलता है कि मैं बुराई से नफरत करता हूं? क्या मैं ऐसी बातें या ऐसे काम करने की कोशिश करता हूं जिससे मंडली में शांति और एकता बनी रहे? खासकर स्मारक के आसपास के हफ्तों में हम इस तरह के सवाल करके खुद की जांच कर सकते हैं। जब हम इस बारे में सोचेंगे कि यहोवा और यीशु ने हमारे लिए क्या क्या किया है, तो हमारा दिल उनके लिए एहसान से भर जाएगा और हमारा मन करेगा कि हम खुद के लिए नहीं बल्कि मसीह के लिए जिए। जो भेड़ें दूर चली गई हैं। पैराग्राफ 14। सवाल, कुछ भाई बहन परमेश्वर के झुंड से दूर क्यों चले गए हैं? कुछ भाई बहनों ने सभाओं में आना छोड़ दिया है। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो सालों से यहोवा की सेवा कर रहे थे, आखिर वो मंडली से दूर क्यों चले गए? कुछ भाई बहन जिंदगी की चिंताओं में उलझ गए हैं। लूका 21:34। वहीं दूसरे ऐसे हैं जिन्हें भाई बहनों के व्यवहार से ठोकर लग गई। कुछ भाई बहनों ने कोई गंभीर पाप किया है मगर वो प्राचीनों से मदद मांगने से हिचकिचा रहे हैं। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से आप परमेश्वर के झुंड से दूर चले गए हैं? अगर हां, तो आप क्या कर सकते हैं? यहोवा ने अपने बेटे की फिरौती देकर आपके लिए जो प्यार जाहिर किया है, वो आपको क्या करने के लिए मजबूर कर सकता है? पैराग्राफ 15। सवाल, यहोवा अपनी उन भेड़ों के बारे में कैसा महसूस करता है जो उसके झुंड से दूर चली गई हैं? सोचिए कि यहोवा अपनी उन भेड़ों के बारे में कैसा महसूस करता है जो उससे दूर चली गई हैं। उसने उन्हें ठुकराया नहीं है, ना ही वो उन्हें भूला है। इसके बजाय वो अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढता है, उन्हें खिलाता पिलाता है और उनकी मदद करता है ताकि वो उसके पास लौट आए। यहेजकेल 34:11-12 में लिखा है, सारे जहां का मालिक यहोवा कहता है, देखो मैं खुद अपनी भेड़ों को ढूंढकर लाऊंगा और उनकी देखभाल करूंगा, जैसे एक चरवाहा उन भेड़ों को ढूंढकर लाता है जो तितर बितर हो गई हैं और उन्हें खिलाता पिलाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों की देखभाल करूंगा। मैं उन्हें उन सभी जगहों से बचाकर ले आऊंगा जहां वो काले घने बादलों के दिन तितर बितर हो गई थी। और आयत 16 में लिखा है, मैं खोई हुई भेड़ को ढूंढूंगा, भटकी हुई को वापस लाऊंगा, जो घायल है उसकी मरहम पट्टी करूंगा और जो कमजोर है उसे मजबूत करूंगा, मगर जो मोटी ताजी और तगड़ी है उसे मिटा डालूंगा, मैं उसका न्याय करके उसे सजा दूंगा। क्या यहोवा आपके लिए भी ऐसा ही कर रहा है? बिल्कुल, आप ये लेख पढ़ रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि आप अब भी यहोवा से प्यार करते हैं और उसे खुश करना चाहते हैं। यहोवा ने पहले भी देखा था कि आपका दिल कितना अच्छा है, तभी उसने आपको अपनी तरफ खींचा। यहोवा अब भी देख सकता है कि आपके दिल में क्या है। क्या आपको नहीं लगता कि वो दोबारा आपको अपने पास बुला रहा है? पैराग्राफ 16। सवाल, यहोवा के पास लौट आने में क्या बात उसकी भेड़ों की मदद कर सकती है? यहोवा के पास लौट आइए ब्रोशर में लिखी इस बात पर ध्यान दीजिए। आप इस बात पर पूरा भरोसा रख सकते हैं कि जब आप यहोवा के पास लौट आएंगे तब वो हर कदम पर आपका साथ देगा। वो चिंता से जूझने में आपकी मदद करेगा। अगर आपको ठेस पहुंची है तो वो आपको संभलने में मदद देगा, और अगर आपको दोष की भावना सताती है तो वो साफ जमीर पाने में आपकी मदद करेगा और उससे मिलने वाला सुकून देगा। तब आपका दिल एक बार फिर आपको अपने भाई बहनों के साथ मिलकर यहोवा की सेवा करने के लिए उभारेगा। यह भी याद रखिए कि प्राचीन आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। वो आपके लिए आंधी से छिपने की जगह और तेज बारिश में मिलने वाली पनाह हो सकते हैं। यशाया 32:2। हम जानते हैं कि आप फिरौती बलिदान की बहुत कदर करते हैं और ये जाहिर करना चाहते हैं कि आप यहोवा का कितना एहसान मानते हैं। तो खुद से पूछिए, यहोवा के साथ मामला सुलझाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? यशाया 1:18। जैसे सोचिए, क्या आप सभा के लिए राजघर जा सकते हैं? क्या आप किसी प्राचीन से बात कर सकते हैं और उससे मदद मांग सकते हैं? हो सकता है वो प्राचीन किसी भाई या बहन से कहे कि वो कुछ वक्त के लिए आपके साथ बाइबल अध्ययन करे। यकीन रखिए, आप यहोवा के पास लौट आने और फिरौती बलिदान के लिए अपनी कदर दिखाने के लिए जो कुछ करेंगे, यहोवा उस पर जरूर आशीष देगा। पैराग्राफ 16 से जुड़ी तस्वीर में दिखाया गया है कि एक बुजुर्ग आदमी राजघर के पास खड़ा है और उसके हाथ में बाइबल है। वो भाई बहनों को प्यार से एक दूसरे का स्वागत करते हुए देख रहा है। चित्र शीर्षक, खुद से पूछिए, यहोवा के साथ मामला सुलझाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? आप क्या करेंगे? पैराग्राफ 17 और 18। सवाल, इस साल स्मारक से पहले हम किस बारे में सोच सकते हैं? यीशु ने कहा था कि यहोवा ने इसलिए अपने बेटे की कुर्बानी दी ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न किया जाए बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना 3:16। फिरौती बलिदान के जरिए यहोवा हमें पाप और मौत से छुड़ाता है, इसलिए हमें कभी इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो आइए हम स्मारक से पहले वक्त निकालकर इस बारे में सोचें कि यहोवा और यीशु ने हमारे लिए कितना प्यार दिखाया है। उनका प्यार हमें मजबूर करेगा कि हम भी उनके लिए अपना प्यार जाहिर करें। आप कैसे जाहिर करेंगे कि आप फिरौती बलिदान की कदर करते हैं? आप जिस तरह कदर जाहिर करें वो शायद दूसरों से अलग हो, पर यकीन मानिए, ऐसा करने के लिए आप जो भी करेंगे यहोवा उस पर जरूर आशीष देगा। उसे यह देखकर बहुत खुशी होती है कि आप और दुनिया भर में उसके लाखों सेवक खुद के लिए नहीं बल्कि उसके लिए जी रहे हैं जो उनके लिए मरा। 2 कुरिन्थियों 5:15। ये लोग फिरौती बलिदान के लिए अपनी कदर कैसे जाहिर कर सकते हैं? बाइबल विद्यार्थी, जिनका बपतिस्मा हो चुका है, जो भेड़ें दूर चली गई हैं। गीत 14, धरती के नए राजा की तारीफ करें। लेख समाप्त।